जो हमारा विषय है वह है राजयोग के द्वारा परमात्मा की पहचान। हम सब ने समझ लिया कि योग क्या चीज है। योग अर्थात संबंध, जोड़ या मिलन, और फिर ये भी समझ लिया कि राजयोग क्या चीज है। राजयोग अर्थात सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम, परमात्मा से आत्मा का मिलन। क्यों इसे राजयोग कहते हैं? क्योंकि जो सबसे ऊंचा है उसके साथ आत्मा का मिलन है। और जो विधि इस राजयोग में अपनाई जाती है उस मिलन के लिए वह भी बहुत ऊंची है। और इससे जो प्राप्ति होती है आत्मा को वह भी सबसे ऊंची है। तो विधि क्या है वो तो आपको बाद में बताएंगे, प्राप्ति क्या है वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी है कि जिस परमात्मा से आत्मा की तार जोड़नी है वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, हम कैसे समझें कि यही परमात्मा का स्वरूप है। और जब हमें उसकी पहचान हो जाएगी तो उनसे संबंध जोड़ना, उनका अनुभव करना मुश्किल नहीं होगा। तो जिस प्रकार मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है उसी प्रकार ईश्वर को भी भूला हुआ है। तो हमारी पहचान और उस परमात्मा की पहचान ये दोनों ही परमात्मा ही आकर दे सकते हैं। अब क्या है उसकी पहचान, परमात्मा ने हमें वह कैसे दी है जो आज आप तक हम रखना चाहेंगे, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे उसने दी। लेकिन क्या दी पहचान अपनी, वह मैं आज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, भगवान कौन है। आज परमात्मा के नाम पर दुनिया में कितने मत मतांतर हैं, कितनी विचारधाराएं हैं। अगर कहें कि जितने मुख उतनी बातें, कहा जाता है मुंडी मुंडी मते बिना या तुंडी तुंडी, कहते हैं ना मराठी में, कहते हैं किस में कहते हैं, जितने मुख उतनी बातें, जितने लोग उतने उनके विचार। एक परमात्मा के बारे में कितने विचार हैं संसार में, अलग अलग धर्मों में तो अलग अलग विचार है ही, लेकिन एक धर्म में भी कई प्रकार के विचार हैं। अब ये सब क्यों, जबकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा सत्य है, इंग्लिश में कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, वो सत्य है, तो सत्य की पहचान एक ही होनी चाहिए। झूठ की पहचान अनेक हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है क्योंकि एक सत्य को उसे छिपाना है, समझो उसने चोरी की है, परंतु वो छिपाता है कि उसने चोरी की है, तो झूठ बोलेगा, मैं तो उस समय यहां था ही नहीं, मैं तो वहां था, फिर वहां पूछेंगे, कहेंगे यहां तो था नहीं, तो क्या उस समय मैं वहां था। तो एक सच को छिपाने के लिए उसको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, होता है ना। और एक झूठ का दूसरे से मेल नहीं होता है, तो कई बार वो झूठ पकड़ा जाता है, पता चल जाते ही तो झूठ बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलता है, जो है जैसे है वैसी बात कहता है, तो उसको अपने बातें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो है जैसी है वही है, कोई बात कहेगा। इसी प्रकार अगर परमात्मा के लिए हम कहते हैं वो सत्य है, तो उसकी पहचान भी एक ही होनी चाहिए। लेकिन आज कितने विचारधाराएं हैं ईश्वर के बारे में। हमारे पास एक कार्टून है, चित्र है, जिसमें कलयुगी इंसान की का चित्र निकाला है, उसके हाथ में दैनिक कलयुग अखबार है, और बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में एकदम मूंझा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उस अखबार में ईश्वर के बारे में कई बातें पढ़ता है, अलग अलग कॉलम्स बनी हुई है, और एक एक कॉलम में एक एक अलग अलग विचार ईश्वर के बारे में पढ़ रहा है। कहां लिखा है आत्मा ही परमात्मा है, फिर नीचे पढ़ता है कि नहीं आत्मा तो परमात्मा का अंश है, फिर कहीं पढ़ता है कि परमात्मा का तो कोई नाम रूप ही नहीं है, फिर आगे पढ़ता है कि ये जितने भी इंसान है जो भी है सब ईश्वर के ही रूप है, हम सब भगवान के ही रूप है। कहां पढ़ता है कि ये जो प्रकृति है ना ये ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं, फिर कहीं पढ़ता है कि परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, फिर कहीं पढ़ता है कि नहीं वो तो सातवें आसमान में रहता है, कोई कहां पढ़ता है कि वो तो हृदय में वास करता है, और लास्ट में पढ़ता है कि भगवान तो है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो जैसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे वो मूंझता जाता है, क्योंकि जितने भी ये मते हैं सब एक दो के विरुद्ध हैं। एक तरफ कहेंगे नाम भी नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं, और फिर कहेंगे सारे उसी के ही नाम रूप है, सब ईश्वर ईश्वर है। अब सत्य क्या, कहां पढ़ा कि हृदय में है, दिल में है, और फिर कहां पढ़ा सब जगह है, फिर कहां पढ़ा ऊपर है, तो आखिर कहां है वो। फिर और आगे विचार है कि ये सब भगवान ही तो सब कुछ करता है, ये हाथ हिलता है तो भगवान की शक्ति हिलाती है, पत्ता भी हिलता है तो भगवान के हुक्म के बिना नहीं हिल सकता है। अब भगवान इतना सब कुछ करता रहेगा, पत्ते को भी हुक्म देगा हिलो तब हिलेगा, आखिर भगवान करता क्या है, क्या नहीं करता, क्या वही सब कुछ करता है। फिर कई बार फिर कई और विचार है कि नहीं, वो तो कुछ नहीं करता, वो तो साक्षी और दृष्टा है, वो सजा देता है अगर हम कोई भूल करते हैं। तो देखिए, एक ईश्वर के बारे में इतने सारे मंतव्य है तो इंसान तो मूंझेगा ना। अब आपको एक किसी एक व्यक्ति से मिलना है और 10 लोगों से आप पूछो वो फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, और हर एक आपको अलग अलग एड्रेस बताए, तो आप कहेंगे आखिर कैसे मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा। हर एक उसके बारे में अलग अलग बातें बताए तो आप तो मूंझ जाएंगे। तो उस कार्टून में ऐसे ही दिखाया है। तो वह मूंझा हुआ इंसान पूछता है कि जितने मुख उतनी बातें, मुझे कैसे ज्ञात हो कि सत्य क्या है। तब उसी समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी यानी परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूं। मेरी पहचान मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जैसे आपके बारे में 10 लोग 10 बातें कहे, लेकिन आप क्या हैं, कैसे हैं, आपके सिवा और कोई नहीं बता सकता है कि सचमुच आप क्या हैं। आप ही अच्छी तरह अपने बारे में जानते हैं। लोग तो अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से सुनाएंगे जो कुछ उनको सुनाना है। हरेक का दृष्टिकोण अपना अपना होता है, हरेक का सोचने का ढंग अपना अपना होता है, पर आप जो हैं, आपकी सोच अनुसार जो आप अपने बारे में समझते हैं वो आप ही बता सकते हैं। तो परमात्मा के बारे में भी जो सत्यता है वो ईश्वर खुद ही बताते हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम पड़ा, तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापक हैं, उनके द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। और कैसे दी है वो आपको आगे बताएंगे, पर क्या दी है तो वो मैं आपको बताने जा रही हूं। कई लोग समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां ना, इनका जो गुरु है इनको ही भगवान मानती है, लेकिन हम आपको बताएं ऐसी बात नहीं है। किसी भी देहधारी को यहां हम भगवान गुरु नहीं मानते। पिताश्री ब्रह्मा बाबा भी हमारे भगवान तो क्या, गुरु भी नहीं है। उनको हम अलौकिक पिता कहते हैं। पारलौकिक पिता तो एक ही परमात्मा है जिसको वो भी याद करते हैं। तो इसीलिए क्या पहचान दी है, अगर मैं आपको कहूं ये पहचान दी है, आप कहेंगे हम माने कैसे। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ कसौटी है, कोई मापदंड है जरूर, जिसके आधार से हम निर्णय कर सकेंगे कि आखिर ईश्वर हम किसको कहें। अगर हम सबका कहना मानते रहेंगे, जिसने कह दिया ये है मैं कहूंगी सच है, कोई कहेगा ये है मैं कहूंगी सच है, तो जितनी बातें सुनूंगी उसी को मैं सच मान बैठूंगी, तो परिणाम क्या होगा, अंधविश्वास हो जाएगा। और अंधविश्वास ठीक नहीं है। परमात्मा में भावना रखना ही और बात है। भगवान भावना का भूखा है, और प्रेम का प्यासा है ऐसे माना गया है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भावना, आस्था, विश्वास, निश्चय, ये बहुत सुंदर बातें हैं। लेकिन जिसने जो कहा वो मान लिया बिना विवेक के, तो वो अंधविश्वास हो जाता है और अंधविश्वास हमें कभी भी ईश्वर के निकट नहीं ले जाएगा। तो इसलिए अंधविश्वास भी सही नहीं है। परंतु दूसरी ओर कोई ईश्वर के बारे में तर्क करे, अगर है तो दिखाओ हमें, है कई लोग कहते हैं कि अगर है तो दिखाओ। अब दिखाएं कैसे, परमात्मा कोई स्थूल चीज थोड़ी है। या कहे कि प्रयोग करके बताओ तो हम माने। अब प्रयोग भी कैसे करें, कौन से प्रयोगशाला में प्रयोग करें। मान लो कोई प्रयोग किया जाता है, दो वस्तुओं को जोड़ करके तीसरी वस्तु बनाते हैं। अब भगवान को प्रकट करने लिए दो वस्तुओं को जोड़ेंगे क्या, तब प्रकट होगा, ऐसे है क्या? तो इसलिए प्रयोग करके बताएं ये भी कैसे संभव है। फिर कोई कहे कि हम कैसे माने, दिखाई दे हमें तब माने। अब दिखाएं भी कैसे, कोई स्थूल हो कोई भौतिक चीज हो तो दिखाएं। ये आंखें तो केवल भौतिक चीज ही देख सकती है, तो स्थूल रूप में आपको कैसे दिखाएं। इसलिए तर्क का भी विषय नहीं है ईश्वर, तर्क हमें ईश्वर से दूर करेगा और अंधविश्वास भी ईश्वर से दूर करेगा। तो आवश्यकता क्या है कि विवेक और भावना दोनों को मिलाएं। भावना भी अच्छी चीज है और विवेक संगत भी हो। तर्क में, तर्क सही नहीं है क्योंकि ईश्वर के साथ तर्क नहीं लग सकता, पर विवेक जरूर माने। आज मानिए कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं कैसे मानूं ये डॉक्टर है? कोई उसके सिर पर ललाट पर लिखा हुआ तो नहीं है कि ये डॉक्टर है। कई नकली भी डॉक्टर्स हो जाते हैं ना, नकली भी होते हैं। तो कैसे पता चले ये डॉक्टर है? तो उनके जैसे संपर्क में आते हैं, उनकी गुण उनके विशेषताएं पता चलता है, उसके पास मेडिकल नॉलेज कितना है, उनके कोई क्लिनिक है हॉस्पिटल है, उसके क्या किसको शफा मिली है, उससे किसको लाभ मिला है, उनके अनुभव है, कई बातें हैं जिसके आधार से हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हाँ ये डॉक्टर है। इसी प्रकार आज कोई कह दे मैं भगवान हूँ, कई कहते हैं दुनिया में बहुत है ये मैं भगवान हूँ, तो क्या हम मान लेंगे क्या? कहता है तो होगा ऐसे? भगवान तो एक है या तो कितने हजारों भगवान बन के बैठे हैं हा? तो क्या है कि जहाँ सत्यता के सामने ना वो छिप जाती है, क्योंकि सत्यता चारों ओर जब फैल जाती है ना तो सत्यता छिप जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो परमात्मा कौन है वो अपनी पहचान जो उसने दी है उसको समझने के लिए भावना और विवेक को जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? कुछ बातें हैं, जैसे हम प्रयोग जब करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करते हैं, तो उसके लिए समझो हमें कोई चीज मिलती है, कोई धातु है कुछ है, और हमें कहा जाता है कि आप बताएं ये क्या है। तो साइंस के एक्सपेरिमेंट से हम कई प्रयोग जब करते हैं तो वो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कई चीजें प्रयोग में लाते हैं और वो लिखते जाते हैं नोट करते जाते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है इसका रिएक्शन क्या है, और उसके आधार से हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है, जिसको हम कहते हैं नोन टू अननोन। जो जानते हैं उसके आधार से जो नहीं जानते उसको समझते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सार्वभौमिक है, सभी धर्मों में मान्य है, जिसके आधार से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परमात्मा हम किसे कहेंगे। ये तो जरूर है कि परमात्मा एक है, उसे चाहे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, वाहिगुरु कहो, सदगुरु, कई हर धर्म में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है एक ईश्वर के लिए। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है और मुसलमानों का अल्लाह अलग है और क्रिश्चियंस का गॉड अलग है, अलग है क्या? एक है। इसीलिए कहते वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है कि विश्व एक परिवार है, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो ये जब हम समझते हैं तो कौन सी ऐसी सार्वभौमिक सत्य बातें हैं जो हर धर्म में प्रचलित हैं ईश्वर के बारे में, उसको जब हम समझेंगे तो उसके आधार से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है। तो पहली बात कि जो स्वरूप सभी धर्म पिताओं ने भी स्वीकार किया, चाहे क्राइस्ट आया, गुरु नानक आए, मोहम्मद आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ये जितने भी धर्म पिताएं आए, सब ने उसी स्वरूप को स्वीकार किया। अब वो कौन सा स्वरूप होगा जो सभी धर्मों को मान्य हो? किसी भी धर्म पिता ने ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। कितने संत होके गए लेकिन किसी संत ने भी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूं। ग्रंथ आप पढ़ेंगे जो सिखों का ग्रंथ है, उसमें परमात्मा की जो स्तुति लिखी गई है वो ज्योति की महिमा है। ज्योति को पहचाना ग्रंथ में जो महिमा है गुरु नानक ने गाई, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अर्थात वो एक है, निराकार है, निरंकार है, निर्विकार है, अकाल मूरत है। ये कोई भी देहधारी की महिमा नहीं हो सकती है। ये इस देह को तो काल खा जाएगा, आज है कल खत्म हो जाएगा। काल का दो अर्थ होता है, एक काल का अर्थ होता है मृत्यु और दूसरा अर्थ होता है समय। समय को भी काल कहते हैं और मृत्यु को भी काल कहते हैं। भाई ये इसको काल खा गया यानी मृत्यु आ गया, या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, समय को भी काल कहते हैं। परमात्मा अकाल मूरत है, उसको काल खा नहीं सकता, वो समय के बंधन में नहीं है। तो इसीलिए गुरु नानक ने उसकी महिमा की और खुद को क्या कहा, मैं दास हूं, नीच हूं, यानी अपने आप को बड़ी नम्रता जताते हुए अपने को हीन कहा। उनकी ये भावना थी, हरेक का अपना अपना विचार है। क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूं, यही कहा मैं ईश्वर की संतान हूं, परमात्मा को पिता कहा, गॉड द फादर। और खास करके जब उसे सूली पर लटकाया जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था, तब उसने यही मुख से शब्द कहे, फादर, हे पिता, आप उन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो किसको उसने याद किया और कहा पिता उन्हें क्षमा कर दे? खुद को बेटा का, फादर, सन एंड होली गोस्ट, ये क्रिश्चियनिटी में आता है। तो फादर कौन है जिसको क्राइस्ट ने भी याद किया? गॉड इज लाइट, ये कहा, लीड मी दाई काइंडली लाइट, ये परमात्मा को कहा। इसी प्रकार मोहम्मद ने कभी भी ये नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, अल्लाह का मैं पैगंबर हूं, पैगंबर कहा, मोहम्मद पैगंबर। तो पैगाम तो किसी और का लाया जाता है ना, खुद तो पैगंबर हो गया। अल्लाह को क्या कहा, नूर है, नूरे इलाही, तो नूर है वो, इलाही बहुत प्रकाश स्वरूप है। तो वो नूर या नूरे इलाही, ये किसकी यादगार है, ये किसके लिए कहा? उस ज्योति के लिए। महात्मा बुद्ध और महावीर यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों में एक ईश्वरवाद नहीं है। इन्होंने ईश्वर के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा है, कर्म को महत्व जरूर दिया, परंतु एक ईश्वर है ये अपने खुले शब्दों में नहीं कहा। परंतु फिर भी जब आप महात्मा बुद्ध को देखेंगे, महावीर को देखेंगे, उनको उनकी जब उनका उनकी मूर्ति या उनका फोटो देखते हैं तो हमेशा ध्यान की अवस्था में दिखाया जाता है। महात्मा बुद्ध को और महावीर को, तो प्रश्न उठता वो किसका ध्यान करते होंगे, महावीर ने और महात्मा बुद्ध ने किसका ध्यान किया, जरूर उनसे कोई ऊंचा है। तो इसीलिए परमात्मा कौन है जिसको सभी धर्म पिताओं ने भी याद किया, जिसका ध्यान करके उनको भी बोध हुआ। नहीं तो महात्मा बुद्ध और महावीर तो पहले राजकुमार दिखाते हैं, राजकुमार थे, तो ये कहां से ज्ञान आया, बोध हुआ और बुद्ध कहला दिया, महावीर कहला दिया, विजयी जैनेन्द्र कह दिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। किस आधार पर? उस परमात्मा का ध्यान करके, वो शक्ति पाली तो बोध हुआ। तो इसीलिए परमात्मा कौन है, वो एक निराकार है। परंतु जब हम निराकार शब्द कहते हैं तो कई लोग समझते उसका तो कोई नाम रूप ही नहीं है। अब कोई नाम रूप ही नहीं तो फिर किसको कहते हैं परमात्मा, ये भी तो समझना होगा। निर्गुण कहते हैं तो फिर निर्गुण माना कोई गुण नहीं, तो कई लोग समझ उसमें तो कोई गुण है ही नहीं। अब एक तरफ तो उनकी इतनी स्तुति गाते हैं कि ईश्वर की अपरम अपार महिमा है, सागर को स्याही बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ और ईश्वर की स्तुति साक्षात सरस्वती बैठ के लिखे, तो भी पूरी नहीं होगी, इतनी अपरम अपार महिमा है उस ईश्वर की। तो स्तुति गाते गाते थक जाता इंसान, लेकिन वो स्तुति पूरी नहीं होगी। और फिर कहते निर्गुण, तो इसका अर्थ है, समझना होगा कि इसके अर्थ क्या है। तो किस स्वरूप को धर्म पिताओं ने याद किया, कोई दैहिक स्वरूप नहीं था। तो पहली बात, वो स्वरूप जो सभी धर्मों को स्वीकार्य है, और वो स्वरूप एक ही है, ज्योति स्वरूप। और एक शब्द में परमात्मा की पहचान हो सकती है, वो पहचान है परम आत्मा। अगर परमात्मा शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, परम प्लस आत्मा, यानी वो भी एक आत्मा है लेकिन परम है। परम का यहां मतलब है सबसे ऊंचा, सबसे न्यारा, सबसे श्रेष्ठ, वो आत्मा है। तो जैसे आत्मा एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक सितारा है, वैसे परमात्मा भी एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक सितारा है। और उसी स्वरूप को सभी धर्म पिताओं ने याद किया, जिसे परम ज्योति कहा। तो पहली बात, वो स्वरूप जो सभी धर्मों को स्वीकार्य है। अगर कोई दैहिक रूप होता तो सभी धर्मों को स्वीकार्य कभी नहीं हो सकता है। एक धर्म में भी सभी को स्वीकार्य नहीं होता है। मान लीजिए कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राम का भक्त है, तो कृष्ण के भक्त कृष्णपंथी कहलाएंगे, राम के भक्त रामपंथी कहलाएंगे। कोई शंकर को मानते हैं तो उनके कहलाएंगे, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। अब अलग अलग आज विचारधाराएं संसार में हो गई है, इसलिए एक ईश्वर को तो हम भूल ही गए। तो ये पहली कसौटी है कि वो स्वरूप जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार कर सके। दूसरी बात, जब परम शब्द कहा तो परम माना सबसे ऊंचा। अब सबसे ऊंचा का मतलब क्या है? दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, कोई भी सबसे ऊंचा नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन में चार ऐसे संबंध हैं जिनका हर मनुष्य ऋणी है, उनका ऋण जीवन भर नहीं चुकता कर सकता है। वो चार संबंध कौन से हैं? एक है माता पिता, इसलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये ऋण माने गए हैं जो अंत घड़ी तक हमें चुकता करने होते हैं। जिसने जन्म दिया है हमें, वो सदा हमसे ऊंचे हैं। लेकिन परमात्मा का कोई मात पिता नहीं है, वो स्वयंभू है। इसलिए कहा ऊंचे से ऊंचा जिसका कोई मात पिता न हो, अगर मात पिता परमात्मा का भी है तो वो ऊंचा हो जाए। कई हमसे पूछते हैं भगवान को किसने पैदा किया, कई प्रश्न करते हैं। अब भगवान को किसने पैदा किया ये प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है, इस शरीर के लिए उठ सकता है कि ये किसने पैदा किया, तो इसके माँ बाप है। मैं कहूंगी ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरे माता पिता कहेंगे ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है। तो परमात्मा को भी अगर किसने पैदा किया तो वो परमात्मा हो जाए ना, जिसने उसको पैदा, फिर उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया। परमात्मा किसको कहेंगे जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। तो माता पिता जिसका न हो वो सबसे ऊंचा हो। तो एक है माता पिता का संबंध जो सदा हमसे ऊंचा है, जिनकी हम सदा ऋणी हैं। दूसरा है शिक्षक, शिक्षक का जो संबंध है सदा हमसे ऊंचा है। चाहे मेरा कोई प्राइमरी स्कूल टीचर क्यों न हो, बचपन में मुझे पढ़ाया हो और आज वो बहुत बुजुर्ग हो गया, रिटायर्ड हो गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, न देख पाता है, आंखें भी कमजोर हो गई है, और मैं तो बहुत बड़ी टीचर बन गई हूँ, वाइस चांसलर बन गई कोई यूनिवर्सिटी की, मेरे अंदर बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। परंतु जब मैं अपने टीचर से मिलने जाऊंगी जिसने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा, मैं उसको सर कहूंगी, मैडम कहूंगी ना, भले मुझे कई सर मैडम कहे, परंतु मेरा टीचर वो तो टीचर हमेशा ही है, वो नहीं बदलेगा, मैं उसको टीचर ही मानूंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति भारत के थे, वो अपना अनुभव सुनाते थे, यहाँ 2-3 बार आए, वो कहते थे बचपन में जिसने मुझे पढ़ाया था उसका मैं ऋण कभी नहीं चुकता कर सकता हूँ। जब भी मैं अपने गांव में जाता हूँ तो मैं उस प्राइमरी टीचर से जरूर मिलता हूँ जिसने मुझे बचपन में पढ़ाया था, मैं उसके पांव छूता हूँ। वो कहता है अरे आप तो भारत के राष्ट्रपति है, मेरे पांव छूते तो नहीं, मैं आपका ऋणी हूँ, आपके कारण मेरा इतना जीवन बदल गया, मैं कैसे आपको बुला सकता हूँ। यानी शिक्षक का ऋण चुकता नहीं हो सकता है। तीसरा संबंध है गुरु का। चाहे शिष्य कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन वो शिष्य शिष्य ही होगा। जैसे विवेकानंद ने दुनिया में नाम कमा लिया, भारत का नाम रोशन किया विदेशों में जाकर के, लेकिन फिर भी कहने में आएगा वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था। जब पहली बार वो स्वामी गुरु के पास गया होगा बिल्कुल अनजाना, उसको कुछ बोध नहीं था, गुरु के संपर्क में आकर के जो उसने ज्ञान प्राप्त किया विवेकानंद बन गया, लेकिन कहने में तो आएगा कि वो किसका शिष्य था। तो उसका गुरु सदा ही गुरु होगा चाहे शिष्य कितना भी आगे चला जाए। तो परमात्मा वो है जिसका कोई माता पिता भी नहीं, शिक्षक भी नहीं, गुरु भी नहीं, लेकिन वो ही सबके मात पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। उसको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, किसी से विद्या लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चौथा संबंध आता है किसी ने मेरे जीवन की रक्षा की हो, ऐसे समय पर मेरे जीवन की रक्षा की हो, मेरे प्राण बचाए हो, उसके भी हम सदा ही ऋणी रहेंगे। जिसने मुझे जैसे नया जीवन दिया हो, मैं डूब रही थी और मुझे बचा दिया, आग से निकाल दिया, मरने से बचाया, चाहे वो मेरे से छोटा भी क्यों न हो, मैं कहूंगी आपका एहसान मैं सारा जीवन नहीं भुला सकूंगी, ऐसे कहेंगे ना। तो जिसने मेरे जीवन की रक्षा की उसके भी हम ऋणी हैं। अब भगवान को किसी को उनकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबके रक्षक हैं, कि उसकी भी कोई रक्षा करता है, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी है। इंसान मरता है इसीलिए रक्षा की जरूरत होती है। परमात्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खिवैया, यानी गाइड, लिबरेटर, रिडीमर, सेवियर, अपलिफ्टर, ये सारे शब्द हम परमात्मा की स्तुति में गाते हैं। मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, ये सारे जो शब्द हैं ये परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। परम रक्षक है वो सभी के, इसलिए कहते हैं जिसको राखे साइया मार सके न कोई। तो भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार सकता है, तो वो रक्षक के रूप में है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो वो सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वोच्च है, जिनसे ऊंचा कोई नहीं। अब वो कोई देहधारी नहीं हो सकता है, ये दूसरी बात है, ये कसौटी है। इसलिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं, आप उस समय सोचना ये सब बातें इनसे लगती है, कैसे कोई दावा कर सकता है कि मैं ही भगवान हूं। तीसरी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जिनसे कोई ऊंचा तो नहीं है पर उनके समान भी कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ही है ना। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब सापेक्ष है, हर चीज सापेक्ष है, दूसरे से भेंट कर सकते हैं कोई भी चीज। अब ये हॉल है, देखिए हम कहेंगे ये हॉल छोटा है क्योंकि सामने जो हॉल है वो बहुत बड़ा है, 20,000 का हॉल है, उसकी भेंट में तो ये छोटा है। लेकिन उसके उस तरफ दूसरे छोटे छोटे हॉल है, उनकी भेंट में तो ये बड़ा है। तो ये इस हॉल को बड़ा कहेंगे या छोटा कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? किसकी भेंट में? बड़े की भेंट में ये छोटा है या छोटे की भेंट में बड़ा है? तो दुनिया में जो भी कुछ है, जितने भी पदार्थ है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वैभव हैं, इन सब की भेंट होती है किसी न किसी से, सापेक्ष माने जाते हैं। लेकिन परमात्मा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष है। निरपेक्ष माना किसी से उसका पक्ष नहीं है, किसी से भेंट नहीं हो सकती है, दो भगवान भी नहीं है जो उनके समान हो, न समान है न उनसे भेंट हो सकती, वो तो एक ही है। अर्थात वो सबसे न्यारा है, केवल सबसे ऊंचा ही नहीं है पर सबसे न्यारा भी है। तो इस दुनिया में जो भी सापेक्षता है उन सबसे न्यारा है। कैसे? क्या क्या सापेक्षता है संसार में जो शरीर के साथ लगती है? एक है जन्म और मरण, परमात्मा उनसे न्यारा है, इसलिए अजन्मा कहा गया है। वो माँ पिता से जन्म नहीं लेता है, गर्भ में प्रवेश करके जैसे बच्चा जन्मता है वैसे परमात्मा नहीं जन्मता है। अजन्मा है, अकर्ता है, कर्म और फल उनके साथ नहीं लगता। हम आत्माओं के साथ कर्म और फल लगता है और कर्म फल अनुसार हमारे संस्कार भी होते हैं, इसलिए आत्मा के लिए कहेंगे देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा। परमात्मा के लिए ये शब्द नहीं यूज होते, केवल एक ही परमात्मा। इसलिए जो भी सापेक्षता है वो ईश्वर से नहीं लगती, जैसे जन्म मरण, कर्म फल, पाप पुण्य, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, दिन रात, स्वर्ग नर्क, ये सब सापेक्षता है संसार में। परमात्मा इन सब से न्यारा है। तो आप सोचिए कोई भी देहधारी कैसे दावा कर सकता है कि मैं भगवान हूं? इस शरीर के साथ तो सब कुछ लगता है। ये तीसरी बात। चौथी बात, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सर्व का ज्ञाता है, जो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो सबसे न्यारा है। तो जो सबसे न्यारा है वो ज्ञाता भी हो सकता है, वो फंसा हुआ नहीं है इस दुनिया में। जैसे आकाश में हवाई जहाज होता है तो नीचे क्या है वो सब उसमें बैठे हुए लोग देख सकते हैं, पूरा शहर दिखाई देता है जब हवाई जहाज में जाते हैं तो, क्योंकि ऊपर उठ गया। नीचे धरती पर है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, आगे गली में क्या है कैसे पता चलेगा, परंतु ऊपर उठा तो तीनों ही उनको सारा दायरा इतना बढ़ जाता है जो सब कुछ देख सकते हैं। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों के ज्ञाता है, जानी जानन हार है, सर्वज्ञ है। सब कुछ जानता, इसीलिए तो हम लोग अनायास भी कई बार मुख से निकाल देते हैं। जब कोई बात हमको समझ में नहीं आती है ना, तो हम क्या कहते हैं मुख से, भगवान जाने सच क्या झूठ क्या, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, ईश्वर जाने, खुदा जाने, अल्लाह जाने। तो भगवान जाने सच झूठ को, वही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। एक मैंने जो कर्म किया है वो मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं जानेगा, पर मैं जानता हूँ और ईश्वर जानता है। तो इसीलिए परमात्मा उसे कहेंगे जो सब कुछ जानता है। उसके आगे तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य ऐसे स्पष्ट हैं जैसे ये वर्तमान में आप और हम स्पष्ट हैं। इसलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, और हम अल्पज्ञ हैं, कई बार अनभिज्ञ भी हैं। कैसे अनभिज्ञ होते हैं, कई बातें हमारे सामने एक रस्सी पड़ी होगी और हम डर जाएंगे, भाई ये तो सांप है, रस्सी को सांप समझ लेंगे तो क्या कहेंगे, अनभिज्ञ हो गए ना। कोई पेड़ की छाया है हम कहेंगे भूत है, कई बार डर जाते हैं, भूत वो तो पेड़ की छाया होती है। तो वर्तमान में भी हम भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो भूत और भविष्य तो बहुत दूर की बात है। लेकिन परमात्मा के आगे तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट है जैसे वर्तमान में हम ये आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, परमात्मा उन तीनों कालों को एक साथ देख सकता है। अब ये शक्ति किसी इंसान की नहीं हो सकती है, ये केवल परमात्मा की है। तो कोई दावा करे मैं परमात्मा हूं, तो उनसे पूछो आपके आगे तीनों काल स्पष्ट हैं? कई लोग थोड़ा बहुत हमारा भविष्य बता देते हैं, किसी में कोई भटकती आत्मा प्रवेश हो जाती है और वो कहते देवी आई, ये देवता आया, और फिर कुछ उसका भविष्य बता देते हैं, तो लोग समझ रहे तो भगवान है। ये तो केवल एक गुण है उसके अंदर, क्योंकि परमात्मा कि वो कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं है, बंधन से मुक्त है। तो वो जो भटकती आत्मा है, अभी तक उसको कोई चोला नहीं मिला है, तो वो भी थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसको कोई शरीर नहीं मिला है। जैसे हमें शरीर है तो हम ये जो भूतकाल है उसको भूल गए, पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, भविष्य क्या है कुछ पता नहीं है। परंतु जिसने जन्म नहीं लिया है अभी तक, वो भटकती आत्मा किसमें प्रवेश भी कर सकती है और उसके तीनों कालों को, दूसरे के तीनों कालों को बता सकती है। तो लोग अंधविश्वास में आके कहेंगे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। हमने ऐसे कई जगह देखा, कहेंगे तो भगवान है, तो भगवान है, क्योंकि ये भविष्य बताता है। लेकिन उसी समय उसको इतना गुस्सा आ जाता है, इतनी गालियां बोलता है, उसी समय मार देगा, थप्पड़ भी मारता है, या मांस मदिरा मांगता है। अब ये भगवान ऐसे मांगेगा क्या, नहीं होता है ना, बहुत गांव-गांव में तो बहुत कुछ होता है, तो भगवान ऐसा थोड़ी काम करेगा। तो एक गुण अगर किसी में है, क्योंकि वो भटकती आत्मा प्रवेश हो गई, तो लोग उसी को भगवान भगवान समझ के पूछने लगते हैं, ये अंधविश्वास है। तो चौथी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जिसमें तीनों कालों का ज्ञान इतना स्पष्ट हो जैसे वर्तमान है। और पांचवी बात, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो दाता के समान सदा देता रहता है, वो कभी लेता नहीं है। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, देने वाला जब भी देता, छप्पर फाड़ के देता। देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक सकते हैं, ईश्वर तो दाता है। और ईश्वर दाता के साथ साथ ये प्रकृति भी दाता के रूप में ही है। ये प्रकृति ईश्वर की रचना है, पर वो भी परमात्मा के समान दाता के रूप में है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। धरती को पूजेंगे, पेड़ों को पूजेंगे, हर एक को देवता का रूप कहते हैं, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये देवता के रूप में मानते हैं। देवता माने देने वाला, जो सदा देता है। तो भगवान भी दाता के रूप में सदा देता ही रहता है, वो कभी लेता नहीं है। प्रकृति फिर भी लेगी, पहले एक बीज लेगी तो हजार बीज देगी, पहले तो लेगी ना, अब एक बीज डालेंगे नहीं तो हजार बीज थोड़े मिलेंगे। लेकिन परमात्मा तो कुछ नहीं लेता, उसको तो चाहिए ही नहीं अपने लिए, क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो पांचवी बात, वो दाता के रूप में है। अब उस दाता को हमें पहचानना है जो सर्व धर्मों को मान्य हो, जो सर्वोपरि हो, जो सबसे न्यारा हो, जो सर्व का ज्ञाता हो और जो सबका दाता हो। ये कोई भी देहधारी स्वरूप नहीं हो सकता है, परंतु वो एक ही स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा ने अपनी क्या पहचान दी है कि मैं रूप में ज्योति बिंदु हूं, पर गुणों में सिंधु हूं, सागर हूं, बेअंत हूं। अब गुण तो उनके बेअंत हैं, एक गुण नहीं है। तो परमात्मा गुण नहीं है, वो गुणी है। जैसे फूल में सुगंध है, फूल में रंग है, रूप है, गंध है, रस है, पर फूल जो है वो गुणी है और बाकी उनके गुण हैं। तो परमात्मा तो गुणों का सागर है, पर स्वयं तो गुणी है ना। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो क्या कहते हैं, शांति के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, करुणा सिंधु, रहम दिल, कितनी महिमा उनकी करते हैं। अधिकतर सागर के साथ उनकी महिमा की भेंट करते हैं, सिंधु, हर बात में सिंधु, क्योंकि सागर मानो एक बेअंत का स्वरूप है। सागर का जल बेअंत है, या तो सागर से भेंट करते हैं या तो सूर्य से भेंट करते हैं। ईश्वर की स्तुति को कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार मिट जाता है, तो परमात्मा वो ज्ञान सूर्य की तरह है। जब प्रकट होता है, जब ज्ञान देता है, तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। सूर्योदय होता है तो सब छोटी छोटी जो बत्तियां हैं उनकी जरूरत नहीं होती, वो तो बुझानी पड़ती है क्योंकि सूर्य की रोशनी पर्याप्त है। तो परमात्मा जब ज्ञान देते हैं उसके बाद फिर और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि इतना बेअंत हमें अपनी पहचान देकर, ज्ञान देकर, अपनी रचना और अपने बारे में ज्ञान देके हमें ज्ञानवान बना देते हैं, सत्य की पहचान हो जाती है। तो जब ये पांच बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, ज्योति स्वरूप है। जब हम निराकार कहते हैं तो निराकार का मतलब ये नहीं है कि कोई आकार ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, स्वरूप तो है। पर निराकार क्यों कहा, क्योंकि जो उनका स्वरूप प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक स्वरूप को साकार स्वरूप माना गया है। ये शरीर प्राकृतिक स्वरूप है इसलिए साकार मानेंगे, परमात्मा का ऐसा साकार स्वरूप नहीं है। तो कई कहते हैं फिर श्री राम, श्री कृष्ण, ये हनुमान, ये जितने भी देवी देवताएं हैं, हम कहते हैं ये जितने भी देवी देवताएं हैं वो तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। इंग्लिश में उसको गॉड्स एंड गॉडेसेस कहते हैं, स्मॉल GODS करते हैं, पर जब परमात्मा कहेंगे तो कैपिटल GOD, उसके पीछे S नहीं लगता है, वो बहुवचन नहीं है, वो एक वचन ही है। पर देवी देवताएं तो बहुवचन है, 33 करोड़ देवी देवताएं भारत की संस्कृति है। ये परमात्मा ने मानव को इतना ऊंचा बनाया, लेकिन स्वयं परमात्मा तो निराकार है, इसलिए एक वाक्य में परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो सकती है जो प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। और वो पहचान क्या है कि परमात्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, पूरा सिंधु है गुणों का पर एक बिंदु में, बिंदु में सिंधु की शक्ति। अब उस स्वरूप को हम याद करते हैं, ये निराकार स्वरूप है। कई कहते हैं बहन जी उस स्वरूप तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, कोई साकार में कोई मूर्ति चाहिए। हम कहते हैं साकार में मूर्ति चलो आपको दे भी दें, पर जिस मूर्ति को आपको कहेंगे वो मूर्ति भी तो उनको याद करती है। आप जरा सोचिए, मान लीजिए कोई हनुमान का भक्त है, अब वो कहे कि बस हनुमान ही कोई मैं भगवान मानता हूं, हनुमानी बजरंग बली हा? हनुमान की शक्ति अपरम अपार, पवन पुत्र है, ये है, मतलब हनुमान की तो बड़ी महिमा है। लेकिन हनुमान को भी शक्ति किसने दी? उसको शक्ति कहाँ से आई? आप कहेंगे उसकी अपनी शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का आभास उनको तब होता था जब वो कहता था जय श्री राम। रामायण में दिखाते हैं जय श्री राम का रोड़ा, जय श्री राम कहा तो पत्थर डाला तो पत्थर तर गया, उनको विश्वास था जय श्री राम में। तो श्री राम उनकी शक्ति का स्रोत था, श्री राम का दास बताते हैं, जहां श्री राम है वहां चरणों में हनुमान है। तो हनुमान की शक्ति का स्रोत कौन है? श्री राम। पर श्री राम को भी जब रावण पर विजय प्राप्त करने लंका जाना था, या जो रामायण में आती है बातें, तो उनको कहा कि रावण को ऐसे जीतना सहज नहीं है, आपको अगर रावण को जीतना है तो शिव से शक्ति लेनी पड़ेगी, है ना। तो रामेश्वर में दिखाते ना कि श्री राम ने भी किसकी पूजा की, है? शक्ति कहाँ से ली? शिव से ली। अब सर्वोच्च कौन? जिसको अन्य किसी से शक्ति लेने की जरूरत ही नहीं, उसी को ही तो परमात्मा कहेंगे ना। तो वो कौन है? वो तो एक निराकार ज्योति स्वरूप ही है। अब कई कहेंगे कि बहन जी, पर उस तक पहुंचने के लिए हमें तो कोई माध्यम तो चाहिए ना। हम कहते हैं हाँ, माध्यम तब तक चाहिए जब तक उसकी पहचान नहीं है। जैसे एक कुमारी है, उसका किसी से संबंध जोड़ना है तो बीच में कई दलाल मिल जाते हैं ना, संबंध जोड़वाने के लिए बहुत दलाल मिलते हैं, है ना। परंतु जब वो दलाल आया भी बीच में, या ब्राह्मण है और दोनों कुमार कुमारी को वर वधु बना लिया, शादी हो गई, हथियाला बांध दिया, सात फेरे लगा दिए, सब दोनों ने वायदा कर लिया, उसके बाद फिर वधु वर को याद करे या ब्राह्मण को याद करे? किसको याद करे? हा? अगर वधु वर के बजाय ब्राह्मण को याद करने लगेगी तो उसको क्या कहेंगे? इसीलिए कहा जाता ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी यानी जज की तभी जरूरत पड़ती है, कोर्ट में जाने की तब जरूरत पड़ती है, बीच में कोई दलाल तब चाहिए जब आपस में झगड़ा है। अगर आपस में मिलन है, वो तो संबंध है ही ना, तो बीच में किसी की जरूरत नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का तो अनादि अविनाशी रिश्ता है। हर जन्म में हमने परमात्मा को याद किया है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा कह के हर जन्म में याद किया है। तो जबकि हर जन्म में उस एक को याद किया है, तो फिर अन्य की आवश्यकता क्यों? हाँ, आवश्यकता तब तक है जब तक उसकी पहचान नहीं मिली है। तो हम भी कहते हैं ब्रह्मा पिता के द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान दी है, परंतु यही कहा कि याद उनको ही करना है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से अनादि अविनाशी रिश्ता है, और इसी को ही हम राजयोग कहते हैं। तो पहले उस परमात्मा की हमें पहचान चाहिए कि वो परमात्मा कौन है, उसका क्या स्वरूप है। तो जब निराकार कहा, माना वो स्वरूप प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चीज साकार मानी जाती है। इसी प्रकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। तो निर्गुण का भी अर्थ क्या है कि परमात्मा के जो गुण है वो प्राकृतिक गुण नहीं है। प्रकृति के अंदर कई गुण हैं। हम साइंस में पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल, उसमें एक एक धातु का अपना अपना गुण माना गया है। 108 ऐसे टेबल में आते हैं, और भी कई बढ़ते ही जा रहे हैं। धातु है, एलिमेंट्स है, नॉन एलिमेंट्स है, कई हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं। परंतु उन जितने भी ये प्रकृति की चीजें हैं, इन सब में एक साइकिल है। हर चीज सतो से रजो, रजो से तमो स्थिति में आती है, हर चीज प्रकृति की। तो प्रकृति को अगर हम शॉर्ट में कहें तो उसको कहा जाता है त्रिगुण। प्रकृति की हर चीज त्रिगुण है, इसलिए सगुण कहा जाता है प्रकृति को। लेकिन परमात्मा को त्रिगुणातीत कहते हैं, और त्रिगुणातीत अर्थात निर्गुण, यानी ये जो त्रिगुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकृति में पाए जाते हैं जिसमें प्रकृति विचरण करती है। परंतु परमात्मा इन तीन गुणों में विचरण नहीं करता, उनके आगे ये साइकिल्स नहीं है जो प्रकृति में साइकिल होती है। आपका एक अलग विषय है साइकिल के ऊपर, वो अलग बताया जाएगा आपको। लेकिन परमात्मा इस चक्र से परे हैं, इसलिए उसको निर्गुण कहा, क्योंकि प्रकृति के गुण ईश्वर के गुण से भिन्न है, या ईश्वर के गुण प्रकृति के गुण से भिन्न है, इसलिए परमात्मा की महिमा तो अपरम अपार है। फिर उसको कहा निरंजन। निरंजन माना निरपेक्ष, जो किसी भी साइकिल में न आने वाला सबसे न्यारा, अलख निरंजन कहते ना, क्योंकि एक है, सबसे न्यारा, सबसे सबका प्यारा। परमात्मा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि वो सबसे न्यारा है। वो हम आत्माओं के सदृश जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो हम आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, परमात्मा चक्र से न्यारा है। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कर्म फल के चक्र में भी आती है, और कर्म फल के चक्र में आने के कारण पाप और पुण्य के चक्र में भी आती है। पाप और पुण्य के चक्र में आने के कारण सुख दुख के चक्र में भी आती है। लेकिन परमात्मा को क्या कहेंगे? पाप कटेश्वर, दुख हरता सुख करता। जो खुद दुख और सुख के चक्र में नहीं आता, दोनों से परे है, न दुख में है न सुख में है। वो सुख दाता है, दुख हरता है। जो दुख और सुख दोनों के चक्र में आता है, वो किसी का दुख दूर नहीं कर सकता है। जो किसी के दुख में दुखी हो जाता है, वो दूसरे का दुख कैसे दूर करेगा? एक डॉक्टर किसी मरीज के पास जाकर उसका इलाज करना है, और इलाज करने की वजह वो डॉक्टर ही पेशेंट बन जाए, तो इलाज क्या करेगा? कई बार डॉक्टर भी बीमार हो जाता है ना, तो हम कहते हैं डॉक्टर ही बीमार हो गया। तो डॉक्टर बीमार हो गया, उसका इन्फेक्शन ले लिया डॉक्टर ने, तो वो मरीजों की सेवा क्या कर सकेगा? पर फिर भी वो इंसान है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर्स बहुत संभाल रखते हैं। नर्सेज है ना, ग्लव्स पहनेगी, मुंह पर पट्टी बांधेंगी, न जाने क्या क्या, यानी उनका इन्फेक्शन इनको न लगे या इनका उनको न लगे। परंतु है तो फिर भी प्रकृति की शक्ति। तो परमात्मा इन सब जो भी साइकिल्स है, चक्र है इस संसार के अंदर, परमात्मा इन सब से न्यारा है, इसलिए उनकी महिमा अपरम अपार है। इसलिए कहा निरंजन। निरंजन निर्गुण निराकार। अब कई लोग समझते हैं आत्मा जो है ना, वो परमात्मा का अंश है। अब हम कहते हैं अंश का भी अर्थ समझो। अंश का मतलब ये नहीं है कि उसका टुकड़ा, अभी ये लकड़ी है मेरे हाथ में, इसका अंश निकलता जाए, टुकड़ा काटते जाए, तो आखिर तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस रूप से काटते गए, अंश निकालते गए। परमात्मा के अंश हम इस रूप में नहीं है कि वो परमात्मा इतना बेअंत और उसके हम टुकड़े टुकड़े निकलते गए हैं। नहीं नहीं, आत्मा भी अनादि और अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है। परंतु क्या समानता है कि जो परमात्मा के गुण है, आत्मा के भी वही गुण है। गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ संख्या में अंतर जरूर है। इसीलिए अंश कहा, क्योंकि परमात्मा की जब स्तुति गाएंगे तो क्या कहेंगे? वो शांति का सागर है। तो आत्मा के लिए क्या कहेंगे? शांति स्वरूप है। परमात्मा प्रेम का सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। वो प्रेम आत्मा से अलग नहीं है, उसी का ही गुण है। तो परंतु अंतर क्या है कि हम आत्माएं अपने गुण को भूल जाती है। स्मृति और विस्मृति का खेल है ये संसार, जिसमें आत्मा आकर के अपने गुणों को भूल जाती है। अब वो फिर स्मृति कौन दिलाए? जैसे हनुमान के लिए बताते हैं ना कि उसमें बहुत शक्ति थी, महावीर था, बलवान था, लेकिन उसको शक्ति का आभास तब होता था जब उसको कोई याद दिलाता था कि तुम ऐसे हो, और जब तक याद न दिलाए तब तक उसको विस्मृत था। तो अंदर में शक्ति होते हुए भी उसको भूल गई थी। इसी प्रकार परमात्मा भी आकर के हमें याद दिलाते हैं कि हे आत्माएं, अपने आप को पहचानो और फिर मुझे भी पहचानो। परमात्मा मुझ आत्मा का परम पिता है। क्यों उसे पिता कहते हैं? पिता इसीलिए नहीं कहते हैं कि परमात्मा ने आत्मा को पैदा किया। लौकिक दुनिया में पिता पैदा करता है बच्चे को, पहले नहीं होता बच्चा, फिर पैदा होता है। परंतु परमात्मा ने आत्मा को पैदा नहीं किया। आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है। तो फिर पिता क्यों कहते हैं परमात्मा को? क्योंकि परमात्मा आकर के आत्मा को स्मृति दिलाते हैं, नया जीवन देते हैं। आत्मा अपने आप को भूल गई थी, जैसे मुर्दे के समान हो गई थी। इसलिए आप देखेंगे कई धर्मों में ये मान्यता है, जब कोई मरता है तो दफनाते हैं। क्यों दफनाते हैं? शरीर को जलाते क्यों नहीं है जैसे हिंदुओं में करते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि अंत में अल्लाह आएगा, गॉड आएगा, वो कब्र से निकालेगा। अब कब्र से निकालने का अर्थ ये नहीं है कि कोई 1000 साल पहले मर गया हो और फिर भगवान आके उसको जिंदा करेगा 1000 साल के बाद। वो तो शरीर तो हड्डी मांस का ढांचा है, वो तो सब सड़ जाएगा 1000 साल के बाद। अगर कब्र खोदेंगे तो वैसे ही मिलेगा क्या? वो तो खत्म हो गया, पंच तत्व तो पंच तत्वों में विलीन हो गए। अगर खोदेंगे तो क्या मिलेंगे? हड्डियां ही मिलेगी और क्या मिलेगी? कुछ वो भी सड़ी हुई सूखी हुई है। तो परमात्मा मुर्दों को जगाते हैं, इसका मतलब क्या है? इस समय हम सब आत्माएं जैसे अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रही है, बिल्कुल निर्बल बन गई है। तो ऐसी आत्माओं को नया जीवन प्रदान करते हैं परमात्मा। कैसे? नई प्रेरणा देते हैं कि हे आत्माएं, पहचानो अपने आप को, आप कौन हो? आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, शक्ति स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आनंद स्वरूप आत्मा हो। पहचानो अपने आप को, और आत्मा को एक नई जागृति आती है। ये है एक नया जीवन प्राप्त करना। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल निराश हो, उदास हो, थका हुआ हो, मायूस हो, चेहरा जैसे उतरा हुआ हो, बिल्कुल अशांत दुखी, तो लोगों के मुख से निकलता है ना, अरे क्या शक्ल बना के रखी, जैसे मुर्दे जैसे बोलते हैं, एकदम जैसे ताकत ही नहीं है। तो मुर्दे जैसी शक्ल, क्योंकि मुर्दे में ताकत नहीं होती है, ऐसे घुमाओ तो घूम जाएगा, ऐसे घुमाओ तो घूम जाएगा, न मुड़ने की ताकत होती है, न कोई मुस्कुराने की ताकत होती, कुछ भी नहीं, मुर्दा है। तो आत्मा भी आज शक्तिहीन हो गई है। इसलिए राजयोग के माध्यम से परमात्मा हमें फिर से वो शक्ति देते हैं, महसूस कराते हैं कि हे आत्मा, पहचानो अपने स्वरूप को। तो आत्मा और परमात्मा दोनों की पहचान हमें मिल गई, और जैसे ही हमें मिल गई तो आत्मा परमात्मा को याद करने लग सकती है, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है। गुणवत्ता वही है, संख्या में अंतर जरूर है, पर गुणवत्ता में अंतर नहीं है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार होता है, ये नेत्र नहीं देख सकते, क्योंकि ये नेत्र तो चरम चक्षु है। तो ये चरम चक्षु तो स्थूल चीजों को ही देखेंगे, परमात्मा और आत्मा कोई स्थूल चीज थोड़ी है जो ये आंखें देख सके। उसके लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और कई आत्माओं को ये वरदान मिला हुआ है भगवान का, जो वो दिव्य दृष्टि प्राप्त है और साक्षात्कार होता है। लेकिन साक्षात्कार होना ही आवश्यक है तब हम माने, ये भी बात नहीं है। ये परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है, उसी स्वरूप को याद करेंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरा सत्र होगा उसमें आपको और आगे बताएंगे कि वो कहाँ है और कैसे मन को वहीं ले जाएं। तो अगले सत्र में बताएंगे। अभी उसी स्वरूप को हम याद करें, जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है। तो मन की आंख इस ज्योति स्वरूप को देखे, उनसे ही नाता जोड़े, उनके साथ ही मुझ आत्मा के सब संबंध हैं। वही माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु साजन, आत्मा का अनादि और अविनाशी संबंध है परमात्मा के साथ। तो अब इसी संबंध का हम फिर से थोड़ा अनुभव करेंगे और अंदर में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम का प्यासा है, भावना का भूखा है। अर्थात आत्मा को के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जागे। कैसे प्रेम जागेगा? परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से। जैसे जैसे परमात्मा के गुणों का चिंतन करते जाएंगे, उनके लिए प्रेम पैदा होता जाएगा। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सर्व गुणों का सागर है, बिंदु में सिंधु समान है, शांति प्रेम आनंद का दाता है और मैं आत्मा उसकी अमर संतान हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के लिए जो सुना आपने उसका मनन करें, चिंतन करें। सीधा बैठेंगे। और मन की आंख परमात्मा को देखे, उसी रूप को याद करे। वही सदा शिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। सर्व आत्माओं के परम पिता है। सर्व गुणों का सागर है। बिंदु में सिंधु की शक्ति है। उसके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। जिसको मैं आत्मा प्यार से याद करूं और संबोधन करूं शिव बाबा से, शिव बाबा जो हमारा सच्चा पिता है, बिंदुओं में सिंधु है, बेअंत जिसके गुण हैं, अनंत जिसकी शक्ति है, वो सदा शिव कल्याणकारी है। जिसे देवताओं ने भी याद कर देव पद को प्राप्त किया। जिसकी याद से आत्मा को नया जीवन मिलता है, एक नई शक्ति मिलती है। शांति के सागर शिव पिता की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप शांति के सागर, शांति के स्रोत परमात्मा के सम्मुख हूं। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति की शक्ति प्रदान कर रही है। शिव पिता का सानिध्य मुझे प्राप्त है, उनकी छत्र छाया है। जिस छत्र छाया में मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, वो ही मुझ आत्मा के खिवैया है, मेरे जीवन की नैया को पार ले जाने वाले परम ईश्वर, परम पिता, परम आत्मा। उनका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था उनसे ही मुझे पाना है, वही दाता है। उनसे सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में निहित है। ये कैसी न्यारी और प्यारी स्थिति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाऊं। जिस प्रकार बूंद सागर में समा जाती है, परमात्मा से निकलती हुई शांति, प्रेम, आनंद की किरणें मुझ आत्मा को सराबोर कर रही है। अब इसी शक्ति को स्वयं में समाकर मैं आत्मा भरपूर हो रही है। इसी शक्ति को अनुभव कर मैं आत्मा वापस कर्म करने लिए शरीर का आधार ले चुकी हूँ। और इन कर्म इंद्रियों से परमात्म गुणों को व्यक्त करो, यही राजयोग की सार्थकता है। ओ